समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और रोज की तरह ये सुबह भी लाई है एक नए उजाले के साथ, एक नई उम्मीद की किरण। इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के ताजा तरीन समाचार, साथ ही वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शेफाली। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और शेफाली वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
Good morning to you too. Hello Siddharth and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring you our ever exciting daily news magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we'll bring you the latest in national and international news, metro city updates as well as some historical information related to this day, that is 13th of May. So let's begin with the headlines first.
जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 तथा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 17,70,00,000 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चरण के लिए कुल 1,717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज चुनाव लड़ रहे प्रमुख नेताओं में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्र, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा तथा एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। आज ही आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं।
Campaigning for other phases of Lok Sabha elections has intensified. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi has said that the budget for the ST community has been increased manifold than the previous Congress government. Addressing a rally in Hooghly, West Bengal yesterday, Prime Minister Modi said students from the ST community have also been provided with scholarships. Earlier, he also held 2 public meetings at Jagaddal of Bairakpur Lok Sabha constituency. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will address 3 back-to-back election rallies today in Bihar. Mr. Modi will attend his first public meeting in Hajipur. Mr. Modi will address 2 more public meetings in Muzaffarpur and Chhapra in support of NDA candidates. This afternoon, he is also scheduled to visit Takht Shri Harimandir Sahib, the birthplace of 10th Sikh Guru Gobind Singh Ji Maharaj in Patna this morning. The Prime Minister reached Patna yesterday on a 2-day visit to Bihar. In Uttar Pradesh, many senior leaders and star campaigners of different political parties campaigned in the state yesterday. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah inaugurated the media center of the party in Varanasi yesterday. He also took stock of the preparations related to the roadshow of senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi from Varanasi today. Preparations are in full swing in Varanasi for the nomination of Prime Minister Narendra Modi from the constituency on Tuesday. Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra started her campaign yesterday from Harchandpur area in Rae Bareli constituency. She said that whatever development has taken place in Rae Bareli is because of Congress. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav addressed a political rally in favour of INDI Alliance candidate Tanuj Punya in Barabanki. He later campaigned in Mohanlal Ganj and Lucknow constituencies.
जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में श्रीनगर सीट के लिए मतदान हो रहा है। इसके लिए 2,135 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर 17,47,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लाइव वेबकास्टिंग भी की जा रही है।
The Indian Navy ship Kilton reached Cam Ranh Bay, Vietnam yesterday. The visit is part of the operational deployment of the Indian Navy's Eastern Fleet. This visit is poised to further strengthen the long-standing friendship and cooperation between the two maritime nations. India and Vietnam share comprehensive strategic partnership and further strengthen the ties. The Indian naval ship Kiltan focuses on professional interactions, sporting, social exchanges and community outreach reflecting the shared values of both navies. The visit will conclude with a maritime partnership exercise at sea between the Indian Navy and Vietnam People's Navy.
नजर डालते हैं मौसम पर. मौसम विभाग ने अगले दो दिन में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक में कहीं कहीं तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिणी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र सहित देश के अधिकांश भागों में भी गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले दो दिनों के दौरान तूफान और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं.
And we also have news of a monumental feat wherein Nepal's legendary mountaineer Kamirita Sherpa made history by breaking his record for the highest number of ascents of Mount Everest as he scaled the world's highest peak for the 29th time. According to the Nepalese Ministry of Tourism and Civil Aviation, the 54-year-old veteran climber reached the 8,849-meter peak yesterday. The expedition was organized by the Seven Summit Treks and had 20 climbers. Wow, what a great feat.
That's great. और अब नजर डालते हैं खेल खबरों पर. आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 187 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की पूरी टीम 20वें ओवर में 140 रन पर ही सिमट गई. इससे पहले कल शाम हुए एक अन्य मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया. आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. कोलकाता 12 मैचों में 9 जीत के साथ 18 अंक लेकर पहले स्थान पर है. वहीं गुजरात 12 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर 8वें स्थान पर है.
We have another news from the domain of sports. At Paris Olympics 2024, India will have 6 wrestlers in its contingent with 5 quotas coming through women. Aman Sehrawat and Nisha Dhaiya took India's number of quotas to 6 at the World Olympic Wrestling Qualifiers in Istanbul, Turkey. Earlier, Vinesh Fogat in the 50kg category, Antim Panghal in 53kg, Anshu Malik in 57kg and Ritika Huda in 76kg category had already qualified for Paris Games at different qualifying events. Bajrang Punya, who had won the bronze medal, and Ravi Kumar Dahiya, a silver medalist at the Tokyo Olympics, did not make the Indian wrestling team for the qualifiers, while Deepak Punya, who finished 5th at the Tokyo Olympics, missed out on a quota in the men's 86kg in Istanbul. The Istanbul meet was the final Paris Olympics qualifying event for the wrestlers.
To ye thi ab tak ke mukhya samachar. और श्रोताओं, मुख्य समाचारों के बाद कार्यक्रम आज सवेरे में अब समय है मेट्रो न्यूज का. और सबसे पहले चेन्नई के समाचार सुनते हैं शेफाली से.
जी, द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन विद डिटेल्ड प्रपोजल फॉर सेटिंग अप द तमिलनाडु सेलिंग एकेडमी एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन सेलिंग नियर कुएम रिवर माउथ ऑन मरीना बीच इन चेन्नई. The state government had already allotted Rs 7 crore for the project. It is likely to have a two-story structure including gym, video library and facilities for berthing and servicing yachts. It will come up at the confluence of Kuam River with Bay of Bengal near Marina. And we have another news from Chennai Metro. Anna University is planning to introduce a 3-year Bachelor of Vocation course in Augmented Reality and Virtual Reality at College of Engineering, Guindy. It will be the third course after those in Logistics Management and Footwear Manufacturing started last year at University Colleges of Engineering in Kanchipuram and Arni. The course will have 30 seats. The Sector Skill Council also will arrange for industry internships and students will do 6 months internships during the degree program. और जी,
बिल्कुल अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों पर। सबसे पहले बात चुनाव की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार में लगातार तेजी आ रही है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजधानी की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा के प्रत्याशी दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत रेल में यात्रियों के अनुभव और बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 शुरू किया है। ये सर्वेक्षण 15 जून तक चलेगा। आरआरटीएस के आधिकारिक ऐप कनेक्ट और वेबसाइट के माध्यम से यात्री इस सर्वेक्षण में हिस्सा ले सकते हैं। एनसीआरटीसी ने बताया कि सर्वेक्षण का उद्देश्य नमो भारत रेल के संचालन, स्टेशनों और समग्र यात्रा अनुभवों के बारे में यात्रियों से जानकारी एकत्र करना है। नमो भारत रेल के परिचालन के शुरू होने से अब तक 10 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर दिल्ली यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आंकड़े जारी कर बताया कि इस वर्ष 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,01,164 वाहनों पर कठोर कार्रवाई की गई है। और अब बेंगलुरू की खबरें जानते हैं शेफाली से।
Both Congress and BJP have announced their candidates for the Karnataka Legislative Council election to be held on June the 3rd. The biennial election will be held for 6 seats, 3 each from graduates and teachers' constituencies. The opposition BJP and JDS have formed an alliance. BJP is contesting from 5 seats and JDS from 1 seat. The last date for filing nominations is May 16th and the last date for withdrawal of nomination is 20th May. The counting of votes will take place on 6 June. The 6 seats will be falling vacant due to the retirement of sitting members on June 21. And now over to Siddharth for some updates from Mumbai.
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों पर नजर डालें तो जिला निर्वाचन कार्यालय मुंबई ने सुनिश्चित किया है कि 20 मई को मुंबई में होने वाले लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के दौरान बूथों पर मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध रहें। डीओ ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं और मतदाताओं की आसान पहुंच के लिए सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर स्थित होंगे। इसके साथ ही बूथों पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मुंबई शहर के जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन कार्यालय ने निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी, अधिकारी और काम से संबंधित उद्देश्यों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर तैनात हैं, उन्हें चुनाव के दिन अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव 20 मई को मुंबई में होंगे। डीओ ने कहा कि मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देना महाराष्ट्र सरकार के उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र में होटल और रेस्तरां ने वोट डालने वाले मतदाताओं को 10-20% तक की छूट देने का फैसला किया है। मुंबई में लोकसभा चुनाव में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वोट देने की प्रतिज्ञा अभियान के अंतर्गत होटल और रेस्तरां एसोसिएशन द्वारा ये पहल शुरू की गई है। और शेफाली, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अपने जो हम सभी को मतदान करना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
True, that is the greatest right and the greatest gift. Now from Hyderabad, in Telangana, over 3,32,32,000 electors, including 1.67 crore women, will exercise their franchise in all 17 Lok Sabha constituencies and one assembly by election today. The polling has started and will continue till 6 in the evening, except in 13 left-wing extremism-affected assembly segments. In these 13 segments, polling will conclude at 4 p.m. A triangular fight prevailed between three major parties, BJP, BRS and Congress. A total 525 candidates, including 50 women and 68 from major parties and 286 independents, are in the fray for Lok Sabha seats. From Secunderabad cantonment, 15 candidates are in the fray for the bipole. And now some news from Kolkata.
जी हां, नजर डालते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की खबरों पर. लोकसभा के आम चुनाव के चौथे चरण के तहत आज पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. 1,40,000 से अधिक मतदाता 16 महिला उम्मीदवारों सहित 75 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. पश्चिम बंगाल के कुछ 5 जिले इस चौथे चरण के अंतर्गत है. 3,000 से ज्यादा संवेदनशील बूथों सहित 15,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. और श्रोताओं, बात करते हैं महानगरों के मौसम की. तो सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की. दिल्ली वालों को आज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है. आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हालांकि आने वाले दिनों में गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं. मुंबई का रुख करें तो वहां भी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. तो आज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बारिश के आसार हैं. शैफाली, बाकी मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है?
जी आइए उस पर भी नजर डालते हैं. चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. So, यहाँ का भी हाल कुछ वैसा ही है. बारिश की उम्मीद
जी बिल्कुल तो गर्मी से थोड़ा लोगों को राहत मिलने वाली है. और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं को जानने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई. साल के बाकी दिनों की तरह इतिहास में 13 मई का भी अपना खास मुकाम है. देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये दिन एक मील का पत्थर है. स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई 1952 को बुलाया गया था. 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया. इसी तरह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया जिसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया. पहली लोकसभा ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और इसे 4 अप्रैल 1957 को भंग किया गया. श्री जीवी मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष थे.
Yes, and on this day in 1648, construction of the Red Fort at Delhi was completed. In another year, 1952, Pandit Jawaharlal Nehru again became the Prime Minister of India. On 13th May 1953, the first Indian Navy air station, INS Garuda, was commissioned at Vendaruthi, the naval base in Cochin. In 1956, Acharya Vinoba Bhave started the Bhudan campaign in Tiruvellore.
और 1978 में देश का पहला ध्वजवाहक जहाज आईएनएस दिल्ली सेवा मुक्त हुआ था. और 1995 का दिन जिसमें ब्रिटेन की एक महिला जो 2 बच्चों की मां थी, उन्होंने शेरपाओं की मदद और ऑक्सीजन के बिना, जी हां ये खास बात है कि ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट फतह करने के कारनामे को अंजाम दिया था.
And in 1962 भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड, वॉज गिवन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. And in 1997, Doordarshan dropped plans to enter the direct-to-home DTH mode of television transmission. In 1998, India carried out 2 more nuclear tests at Pokhran in Rajasthan. In 2000, Lara Dutta, who said beauty pageants give women a platform to voice their choices and opinions, named Miss Universe 2000 in the Cyprus capital Nicosia. And in the year 2000, the Union government gave its approval for the creation of the 3 new states of Jharkhand, Uttarachal and Chhattisgarh to be carved out of Bihar, Uttar Pradesh एंड मध्य प्रदेश।
जी हां शेफाली, इतिहास के पन्ने पलटने के बाद अब हम नजर डालते हैं उन लोगों पर जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए थे। आज ही पढ़ते थे सुप्रसिद्ध लेखक रासीपुरम कृष्णा स्वामी की, जिन्हें हम आर के नारायण के नाम से जानते हैं। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को चेन्नई में हुआ था। उन्हें सबसे ज्यादा उनके पहले और लोकप्रिय उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए जाना जाता है, और मालगुडी डेज तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं।
Yes, and Malgudi days is quite a beautiful memory from all our childhood, it seems. So what's interesting about Narayan is that he highlights the social context in everyday life of his characters. He explored with humor and compassion the energy of ordinary life. In a career that spanned over 60 years, Narayan received many awards and honors, including the A.C. Benson Medal from the Royal Society of Literature, the Padma Vibhushan and the Padma Bhushan, which are the second and the third highest civilian awards, and in 1994, the Sahitya Akademi Fellowship, which is the highest honor of India's National Academy of Letters. He was also nominated to the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament.
और आर के नारायण की अगर प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो द इंग्लिश टीचर 1945 में, 1955 में उन्होंने वेटिंग फॉर द महात्मा, 1958 में द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 में, द वेंडर ऑफ स्ट्रीट्स 1967 में और अ टाइगर फॉर मालगुडी 1983 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा कहानियों की अगर हम बात करें तो लॉली रोड, द हॉर्स एंड गुड्स एंड अदर स्टोरीज, अंडर द बैनियन ट्री एंड द स्टोरीज प्रमुख हैं।
So up next, we are celebrating the birth anniversary of Tanjore Bala Saraswati, who was an Indian dancer whose rendering of Bharatnatyam, a classical dance style originated in the South Indian state of Tamil Nadu, made this style of dancing well known in different parts of India and many parts of the world. She was awarded the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan, the third and the second highest civilian honours given by the Government of India, respectively, in 1973. She was awarded the Samhita Kalanidhi Award of the Indian Fine Arts Society, Chennai.
बिल्कुल, तंजोर बाला सरस्वती दक्षिण भारत के बाहर भरतनाट्यम प्रस्तुत करने वाली पहली कलाकार थी उन्हें। और अगर हम देखें तो जो आप बैकग्राउंड में भी सुन रहे हैं, तो तंजोर बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम को लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है मौलाना हसरत मोहानी की, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मौलाना हसरत मोहानी देश की आजादी की लड़ाई के सच्चे सिपाही होने के साथ साथ शायर, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे। मौलाना हसरत मोहानी का वास्तविक नाम सैयद फजल हसन और उपनाम हसरत था। वे उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के मोहान गांव में पैदा हुए थे, इसलिए मौलाना हसरत मोहानी के नाम से मशहूर हुए। इनका उपनाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग इन्हें इसी नाम से जानने लगे। हसरत मोहानी आजादी के बहुत बड़े दीवाने थे और खासकर भारत की आजादी से उन्हें बहुत प्यार था। वे बाल गंगाधर राव को बड़े सम्मान से तिलक महाराज कहते थे और उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज भी अगर कोई आंदोलन या मूवमेंट चलता है तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा उसका खास हिस्सा होता है। इस नारे का इस्तेमाल किसी भी आंदोलन में जान फूंक देता है।
जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।
जहां भारत की आजादी की लड़ाई में तो ये नारा उस लड़ाई की जान हुआ करता था और जब भी जहां भी ये नारा बुलंद होता था आजादी के दीवानों में जोश का तूफान भर देता था। हसरत मोहानी लिखते हैं कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मौलाना हसरत मोहानी की मशहूर गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, आज सबकी जुबां पर है।
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
Right, so next we have the birth anniversary of Sir Ronald Ross, who was also born on this day, 13th May. He was a British medical doctor who received the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1902 for his work on the transmission of malaria, becoming the first British Nobel laureate and the first born outside Europe. His discovery of the malarial parasite in the gastrointestinal tract of a mosquito in 1897 proved that malaria was transmitted by mosquitoes and laid the foundation for the method of combating the disease. It is interesting to note that he was awarded a Nobel Prize for his discovery of the life cycle of malarial parasite in birds. He did not build his concept of malarial transmission in humans but in birds. So from there on, we have now come at this stage, and I must remind all the listeners that, well, this is the mosquito season with the rains on the brink, so we must really guard and shield ourselves against them.
बिल्कुल क्योंकि अब ये मौसम आने वाला है मॉनसून का, तो ऐसे में अपने आप को बचा कर रखें। और आज ही जयंती है सच्चिदानंद राउत राय की, जो उड़िया साहित्यकार थे। मुख्य रचनाओं में पाथे, रक्त, शिखा, हांसत, मसनीर, फूला, चित्रगीव, बाजी राउत ने पाठकों को बहुत पसंद किया था। उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1986 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और साथ ही सोवियत लैंड पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। और श्रोताओं, आज ही जयंती है हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले असित सेन की। उन्होंने चार दशकों तक बॉलीवुड में चलित अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाकर दर्शकों को अपनी अदाओं से लोटपोट होने के लिए मजबूर किया। उन्होंने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में हास्य और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाकर अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई।
तुमने कुछ सुना?
मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे कान बच्चे होंगे।
अरे भगवंती, आज की रात बत्ती जला के सोना चाहिए, चोरों ने हमारा घर देख लिया है।
तो घर में बचा ही क्या है जो चोर लेने आएंगे? चलो भगवान का नाम लेके सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में
जाऊँ। नहीं, 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 तुम कहीं नहीं जाओ, मुझे डर लगता है, मैं यही सोता हूँ।
उनकी प्रमुख फिल्मों में 20 साल बाद, चांद और सूरज, भूत बंगला, नौनिहाल, ब्रह्मचारी, यकीन और आराधना, प्यार का मौसम, पूरब और पश्चिम ने बॉक्स ऑफिस पर खासी धूम मचाई।
And today is also the death anniversary of James Robert Wills, who was an American Western swing musician, songwriter and bandleader. Considered by music authorities as the founder of Western swing, he was known widely as the king of Western swing. He was also noted for punctuating his music with his trademark aha calls. And in 1950, Wills had two top 10 hits, Ida Red Likes the Boogie and Faded Love, which were his last hits for a decade. So let's listen to one of his tracks.
Light the parlor, find the great clock on the mantel, says it's getting late. The curtains on the window, snowy white, the parlor is pleasant on Sunday night.
Ida Red, Ida Red, I'm plumb fool about Ida Red.
And now, for since this is Monday and it's a new week and a new day, so let's end it with a Monday motivation song, which is sung by Benny Dayal, who also happens to have his birthday today. So let's hear to Tarkeebe.
मस्त ना होंगे जो होगा देख लेंगे ठंडे पड़े जो
और श्रोताओं अब घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रहे हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए तो आपके एक बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ इजाजत दीजिए। सिद्धार्थ सिंह और शेफाली को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी कोच।
स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।